4 अक्टूबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्षी दलों ने उठाई अपनी आवाज।
राजनीति मैं कर रहा हूँ कि राजनीति वो कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है?
WWF के अनुसार भारत में अब भी बाघों की तस्करी जारी और कश्मीर में कर्फ्यू के बावजूद पढ़ाई हो रही है कम्युनिटी स्कूलों में।
हम ये नहीं चाहते थे कि इस अनरेस्ट में तो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है तो वो बर्बाद हो, तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव मजबूर हो गए तो इनिशिएटिव लेने पे ले। बच्चे तो आ रहे हैं, अभी बच्चों को भी पता है कि अनरेस्ट ही चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं वो इंटरेस्टेड ले रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, अमर शर्मा से। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में भारतीय जवानों के साथ है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल एक वीडियो जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी को सैल्यूट किया था। साथ ही केजरीवाल ने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान इन स्ट्राइक्स को झुठलाने की कोशिश कर रहा है उस झूठ को साबित करने के लिए सबूत दिए जाने चाहिए। भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि उसने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भारत के दावों का खंडन किया है और कहा है कि कार्रवाई नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी तक सीमित थी। उत्तर पूर्वी सीरिया में एक शादी समारोह में हुए आत्मघाती बम हमले में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। हिस्का शहर के बाहर तलताविल में एक हॉल में एक हमलावर ने खुद को उड़ा दिया जब दुल्हा दुल्हन के निकाह की रस्म चल रही थी। तथा कथित इस्लामिक स्टेट का कहना है कि उनके एक चरमपंथी ने कुर्द लड़ाकों की एक बड़ी भीड़ पर मशीन गन से गोलियां चलाई और इसके बाद धमाका कर दिया। कुर्द सेनाओं ने हिस्का प्रांत के ज्यादातर हिस्सों से जिहादी समूह को बाहर कर दिया है, लेकिन वे घातक बम हमलों को रोकने में असमर्थ रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि वाशिंगटन ने भले ही रूस के साथ सहयोग खत्म कर दिया हो लेकिन वो सीरिया में शांति बहाल करने की कोशिशों को बंद नहीं कर रहा है। ब्रसेल्स में केरी ने रूस की आलोचना करते हुए कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति अपने लोगों पर रासायनिक हथियार और बैरल बम का इस्तेमाल कर रहे हैं और रूस इसकी अनदेखी कर रहा है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली सीरिया में जारी गृह युद्ध के राजनीतिक विकल्पों पर कल एक बैठक कर चर्चा करेंगे। वहीं रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने शांति कोशिशों को तोड़ने के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है। हम कोशिशें जारी रखेंगे, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसलों को लागू करवाने की कोशिशें करेंगे। हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीरिया सहायता समूह इसमें एक महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभा सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पश्चिमी हैती में समुद्री तूफान मैथ्यू पहुंच चुका है जिसकी वजह से वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। समुद्र में लहरें हिलोरे मार रही हैं और हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कई तटीय इलाके 1 मीटर तक बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हाल के वर्षों में आए अटलांटिक तूफानों में ये सबसे शक्तिशाली तूफान है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर अब विरोधी दलों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि सेना के किसी एक्शन पर शक करना देश के हित में नहीं है। पार्टी की तरफ से बोल रहे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संगठन के मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। सलमान रावी की रिपोर्ट।
सिर्फ एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चरमपंथियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सैल्यूट किया था। मगर एक ही दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि केजरीवाल का बयान दरअसल व्यंग्यात्मक था। केजरीवाल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पहले तो उन्हें धन्यवाद दिया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कल अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट किया है, जो भारत की सेना ने उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आलोक में सर्जिकल स्ट्राइक किया। इसके लिए हम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद भी करते हैं, जो उन्होंने कहा वो पूरे देश का मत भी है।
मगर अगले ही पल रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल के बयान पर अपने तेवर तल्ख कर दिए।
पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से ये पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा से प्रभावित क्यों हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, इस देश की एक परंपरा रही है कि संकट के समय देश एक स्वर में बोलता है। राजनीतिक विरोध अपनी जगह हो, लेकिन देश एक स्वर में बोलता है, और ये देश के सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी, इसको सार्वजनिक देश के आर्मी कमांडर्स ने किया।
वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए, मगर इस बार उनका पहले से रिकॉर्ड किया गया बयान नहीं था, बल्कि पत्रकारों के बीच बोलते हुए उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े होने की बात कही।
मुझे बड़ा दुख है कि रविशंकर जी कह रहे हैं राजनीति राजनीति मैं कर रहा हूं कि राजनीति वो कर रहे हैं। अगर मैंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का हम लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना है, तो इसमें बीजेपी इतना बौखलाई हुई क्यों है? बीजेपी इतना डरी हुई क्यों है? हम सब लोगों को मिलके पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देना है, और हम सब लोगों को मिलके इस टाइम, चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, हम सब लोगों को प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करना है।
लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तेवर भी काफी तल्ख हो गए। पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह कहते हैं,
लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की भावनाओं को समझे बगैर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने भी सरकार पर सर्जिकल स्ट्राइक के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा,
हमारे जमाने में 3-3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने कहीं कभी कोई बैनर नहीं लगाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके चुनाव चिन्ह के साथ पूरे देश में अलग अलग ठिकानों पे बैनर लग रहे हैं।
संजय निरुपम के अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए, मगर कांग्रेस ने दोनों ही अपने नेताओं के बयानों से किनारा कर लिया। इस संगठन के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
समय आ गया है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के मिथ्या, झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर देना चाहिए, और जो भी तथ्य और साक्ष्य हमारे पास हों, उनको सरकार के अनुमान के अनुरूप और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आकलन करके सार्वजनिक कर देना चाहिए।
बहरहाल सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर विपक्ष की बयानबाजी के बाद सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा दिन भर ट्रेंड करता रहा, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में अरविंद केजरीवाल के बयान को काफी प्रमुखता से कवर किया गया। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय विषय। अमेरिका ने सीरिया पर रूस से बातचीत खत्म कर दी है, और रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया है। अमेरिका ने सीरिया और रूस पर नागरिकों, अस्पतालों और मानवीय सहायता संगठनों को निशाना बनाकर हमले तेज करने का आरोप लगाया है। वहीं रूस का कहना है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्त करने की कोशिशों में अमेरिका एक जिहादी समूह को बचा रहा है। 16 साल पहले अपना परमाणु ईंधन कम करने का करार करने वाले इन दोनों परमाणु शक्तियों से लैस देशों में अब बढ़ती तकरार के क्या मायने हैं? यही पूछा BBC संवाददाता दिव्या आर्य ने अमेरिका और रूस मामलों की जानकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय से।
असली मुद्दा तो यह है कि रूस और अमेरिका के बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए हैं जिनमें तनाव बढ़ गया है दोनों के बीच, चाहे यूक्रेन का हो, सीरिया का हो, अमेरिका ने यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो उनमें जो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था पहले, ये प्लूटोनियम की ट्रीटी उसका आउटकम था, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल्स बहुत लो हो गए हैं, और इसलिए रशिया ने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया है कि वो इस ट्रीटी को अब आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उनको चोट लगी तो अब वो अमेरिका के साथ ये ट्रीटी बंद कर रहे हैं।
और आपने अभी जो जिक्र किया कि 2014 में उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए यूक्रेन से क्रीमिया के अलग होने के बाद, ये एक तनाव का मुद्दा रहा, और सीरिया में भी दोनों देशों के बीच काफ़ी तनातनी बनी हुई है, बल्कि सीरिया में भी जो युद्ध विराम का समझौता था वो भी आगे नहीं जा पाया है।
बिल्कुल, कल युद्ध विराम का समझौता टूट गया और अब ये काफी डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि दोनों की आर्मी वहां तैनात है, मतलब रूस के फोर्सेस हैं, अमेरिका के भी एयरफोर्स है, तो ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के मुद्दे से तक पहुंच गया है, ये प्रॉक्सी वॉर बन गई है, किसी को पता नहीं चल रहा कि कहां पे ये एग्जैक्ट बॉम्बिंग हो रही है, और ये दोनों देश एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, कोई भी इन दोनों में देशों में से सिविलियंस की बात कर ही नहीं रहा। यूरोप में जो माइग्रेशन हो रही है, वहाँ के बच्चों पे, हॉस्पिटल्स पे अब स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स, तो मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरूर एक न्यूट्रल तरीके से इंटरवीन करना चाहिए कि सीज फायर आप दोनों डिक्लेयर करिए, पर ये दोनों की इतनी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, ऑलमोस्ट जैसे शीत युग के समान तरीके की कॉन्फ्रंटेशन चल रही है।
दोनों परमाणु देश हैं और जो परमाणु संधि उन्होंने की थी साल 2000 में, जिसको साल 2010 में उन्होंने दोबारा उस पर मुहर लगाई, उसके तहत मंशा यही थी कि दोनों अपना जो संवर्धित यूरेनियम है, जिससे परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसको कम करेंगे और उसको चरमपंथी गुटों के हाथ भी वो परमाणु ईंधन ना लगे, इसकी भी एक मंशा से वो संधि की गई थी, जिसके तहत दोनों देशों ने कम से कम 34 टन यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम को खत्म करना था ताकि उसका इस्तेमाल ना हो। जब ये संधि को वो तोड़ देते हैं और सीरिया में भी इस तरह का तनाव बढ़ता है, तो क्या इसको शीत युद्ध के समय के साथ जोड़ के देखना या उस तरह की तनाव की स्थिति से जोड़ के देखना सही है?
अब मैं ये नहीं कह रही कि ये बिल्कुल कोल्ड वॉर का रिपीट है, क्योंकि हिस्ट्री दोबारा एक तरीके से नहीं रिपीट हो जाती। उस वक्त ये कम्युनिस्ट देश था, ये कैपिटलिस्ट थे, अब दोनों कैपिटलिस्ट देख जाए, लेकिन फिर भी उनके जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरीज बहुत है, और तीसरा कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आजकल इंटरवीन कर रहा है, और मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स वगैरह को चुप नहीं रहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि पहले आप लोग ये एक सीज फायर करिए, और फिर से ये जो समझौते थे, जो पॉजिटिव समझौते थे, जिससे पूरे वर्ल्ड पे फर्क पड़ने वाला था, जिससे आर्म्स रिडक्शन, न्यूक्लियर कंट्रोल फिर से शुरू करिए, तो बिल्कुल शीत युग का ये डुप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ स्थिति काफी डरावनी है।
ये थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अनुराधा चिनॉय। हाल के सालों में आए सबसे शक्तिशाली समुद्री तूफान मैथ्यू ने लैटिन अमरीकी देश हेती में दस्तक दे दी है। इस तूफान ने समुद्र तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया है और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। आशंका है कि ये तूफान अगले कुछ घंटों में और भी तबाही मचा सकता है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
पश्चिमी हेती में मैथ्यू तूफान ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार की है। चौथी श्रेणी के इस शक्तिशाली तूफान के बारे में बताया जा रहा है कि इसके चलते हेती के कुछ इलाकों में 40 इंच यानी 102 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज बारिश हो सकती है। अब तक आधिकारिक तौर पर तूफान के चलते हेती के तटीय कस्बे पोर्ट सालुट में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। वहीं पड़ोसी देश डोमिनिकन रिपब्लिक में भी भारी बारिश के चलते एक मकान गिर जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। हेती के अंतरिम राष्ट्रपति जोसे लिमी प्राइवर्ट ने एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू में कहा है कि यह तूफान पहले ही कई लोगों की जान ले चुका है। उन्होंने बताया कि इस तूफान से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मदद दिए जाने के वादे किए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि वे अधिकारियों की ओर से जारी चेतावनियों पर ध्यान दें।
तूफान का खतरा बना हुआ है, ये किसी भी समय तबाही ला सकता है। हमने पहले ही कई मौतें देख ली हैं, वो लोग मारे गए हैं जो समुद्र में निकले थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेतावनी की अनदेखी की।
राष्ट्रपति जोसे लिमी प्राइवर्ट के शब्द। जमाइका की राजधानी किंगस्टन में पहले ही इस तूफान के चलते आई तेज बरसात और तूफानी हवाओं से पैदा हुई बाढ़ ने सड़कों में जाम लगा दिया है। लेकिन बताया जा रहा है कि मैथ्यू हेती के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से गुजरते हुए भयानक तबाही मचा सकता है। वहां इसके चलते भारी बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री तूफान केंद्र से जुड़े जॉन कैनजिलोसी ने कहा है कि इसके खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैथ्यू बहुत शक्तिशाली तूफान है। यह क्षमता के लिहाज से चौथी श्रेणी में है और हैती के दक्षिण पश्चिमी छोर के आसपास अभी सबसे बुरा मौसम चल रहा है। एक बड़ी दिक्कत यह है कि हैती का कुछ हिस्सा पहाड़ियों वाला है और मैथ्यू तूफान बहुत धीमे गुजरने वाला तूफान है, इसलिए यह 15 से लेकर 25 इंच तक की भारी बारिश कर सकता है और कई जगहों पर तो यह बारिश 40 इंच तक भी पहुंच सकती है। इसलिए हैती में मौजूद किसी भी व्यक्ति को सबसे सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अमरीका के राष्ट्रीय समुद्री तूफान केंद्र से जुड़े जॉन कैनजिलोसी के शब्द। आशंका जताई जा रही है कि इसके बाद हैती से होते हुए यह तूफान पूर्वी क्यूबा में पहुंचेगा। क्यूबा के 6 पूर्वी प्रांतों में चेतावनी जारी कर दी गई है और यहां के निवासी दूसरे इलाकों की तरफ जाने लगे हैं।
हैती में जबरदस्त समुद्री तूफान।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। जानवरों के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्थाओं WWF और ट्रैफिक के मुताबिक भारत में बाघों की तस्करी अभी भी जारी है। इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पिछले 15 वर्षों के दौरान औसतन हर हफ्ते 2 मरे हुए बाघ बरामद होते रहे हैं। सुनिए नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और ट्रैफिक नामक संस्था की संयुक्त रिपोर्ट का नाम रिड्यूस्ड टू स्किन एंड बोन्स है, जिसने वर्ष 2000 से लेकर 2015 के बीच के आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक एशिया में कम से कम 1,755 मारे गए और तस्करी के लिए ले जाए जा रहे बाघों के शव बरामद हुए। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 1,755 में से 540 बाघ भारत में बरामद हुए, जो कि कुल संख्या का करीब 30% यानी सबसे ज्यादा है। WWF के अनुसार दक्षिण भारत में बाघों की तस्करी के मामले सबसे ज्यादा दिखे, जबकि मध्य भारत खासतौर से मध्य प्रदेश में बाघों के शव की बरामदगी में बढ़ोतरी देखी गई। बाघों के जाने माने एक्सपर्ट माइक पांडे ने बीबीसी से कहा है कि निश्चित तौर पर तस्करी जारी है।
50 बिलियन से लेके 150 बिलियन का इलीगल ट्रैफिकिंग होता है एनिमल पार्ट्स में, और टाइगर जो है इस टॉप पे है इसमें, और इससे जो बोन्स और मेडिसिनल वैल्यूज के कारण इसकी बहुत बड़ी मांग है और अभी भी ये चल रहा है। पिछले साल देखिए तो 87 टाइगर्स हमारे देश में मर गए और पोचिंग के ही कारण।
बाघों की तस्करी पर ये ताजा रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ग्लोबल टाइगर फोरम और WWF ने कहा था कि दुनिया भर में बाघों की तादाद 3,200 से बढ़कर 3,850 हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बढ़ोतरी मानी जाती है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पूर्व सदस्य नवीन रहेजा की राय बेबाक है।
इतने बड़े देश में वहाँ पे अगर आप एक हजारों किलोमीटर के जंगल में जहाँ पे आपने मुश्किल से 20-30 सिक्योरिटी गार्ड दिए होते हैं या फॉरेस्ट गार्ड दिए होते हैं या टेम्पररी डेली वेजर दिए होते हैं, उनसे अगर आप टोटल एक्सपेक्टेशन करेंगे कि कोई भी टाइगर की पोचिंग नहीं होने देंगे तो वो एक ह्यूमन लिमिटेशन के बाहर है। टाइगर की मल्टीप्लीकेशन अगर पूरी हो और पोचिंग नहीं हो तो टाइगर तो 3-4 साल के अंदर 2 गुना हो सकती है इंडिया में पॉपुलेशन। लेकिन इसके साथ साथ
इसके बावजूद कि भारत, नेपाल, रूस और भूटान में बाघों में बढ़ोतरी देखी गई, WWF ने इसे विलुप्त होते जानवरों की प्रजाति में अभी भी बरकरार रखा है। बहरहाल इस ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब ज्यादा से ज्यादा उन बाघों का शिकार हो रहा है जिन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ देशों में टाइगर फार्म्स में पाला जाता है। रहा सवाल भारत का, तो माइक पांडे को लगता है कि समस्या का समाधान इतना आसान नहीं जितना बाहर से दिखता है। माइक पांडे,
हमारे देश में लोग बहुत ही गरीब है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो वहां पर ये इंसिडेंट्स कुछ ज्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ नीड। तो बहुत जरूरी है कि एक ओवरऑल मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो बाघ के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी लाइवलीहुड जो है उनके पर भी हमको तवज्जो देनी चाहिए।
जाहिर है बाघों के बारे में ये रिपोर्ट एक ऐसे समय में आई है जब दुनिया में इस बात को लेकर थोड़ी संतुष्टि देखी गई थी कि बाघ जो है वो विलुप्त जानवरों की श्रेणी से बहुत जल्द बाहर निकल आएगा। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले 3 महीने से जारी अशांति के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। इन विपरीत हालातों में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों ने कम्युनिटी स्कूल खोले हैं। बीबीसी संवाददाता सुहेल हलीम श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे।
The sun. We see the sun in the sky in the daytime. The sun is very hot and bright.
नन्नी मुनीजा को सूरज के चढ़ने और बादलों के छटने का इंतजार है। वो पढ़ना चाहती है, लेकिन हड़तालों और कर्फ्यू के इस मौसम में वो जाए तो जाए कहाँ?
इसका क्या हाल होगा? The chlorine, this will become negatively charged. Why? It will gain the 2 electrons of the covalent bond between 2 chlorine atoms. ठीक है ना? समझ आई बात आपको?
इसलिए बाकी दूसरे बड़े बच्चों की तरह उसके माँ बाप ने उसे भी इस लोकल स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है, जहाँ कुछ टीचर आपस में मिलकर बच्चों को पढ़ाई के नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यावर अब्बास इनमें से एक हैं।
हम ये नहीं चाहते थे कि इस अनरेस्ट में तो हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है तो वो बर्बाद हो, तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव मजबूर हो गए तो इनिशिएटिव लेने पे ले। बच्चे तो आ रहे हैं, अभी बच्चों को भी पता है कि अनरेस्ट ही चल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब ये वॉलंटरी जो हमारी कोचिंग क्लासेस हो रही है इसमें बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, मगर ये भी है, इनको ये भी है कि कब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि अभी तो डिस्प्यूट ही चल रहा है कश्मीर का।
इस तरह के स्कूल जगह जगह मोहल्लों में चलाए जा रहे हैं। ये सब पेशे से टीचर हैं और यहाँ ज्यादातर वो बच्चे आते हैं जिनकी खुद पढ़ने लिखने में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन फिर भी स्कूल का कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा।
बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे हम घर पे बैठे थे, इतने मन से बैठे थे हम घर पे, तो उतना नहीं पढ़ पाते थे जितना हम यहाँ पे पढ़ते हैं टीचर्स के पास, उतना नहीं पढ़ पाते थे घर पे। पहले तो मैं यहाँ पे 7:30 से आती हूँ, 10:30 या 11:30 तक, उसके बाद घर जाती हूँ, थोड़ी पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद घर का शेड्यूल वगैरह, उसके बाद भी और पढ़ती हूँ, लेकिन तो भी सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो रहा है हमारा।
जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका करियर दांव पर लगा हुआ है।
सर, जब से 3 महीने हुए किसी जगह कोचिंग नहीं की, अब कल से मैं यहाँ पर कोचिंग करने आया हूँ। मैंने सुना मेरे को पापा का दोस्त है यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उसी ने बोला यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं। जब से यह हड़ताल हुआ तब से हमने कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हुआ है जब से हड़ताल हुआ।
यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ आती हैं क्योंकि कभी कर्फ्यू और कभी हड़तालों के इस माहौल में माँ बाप लड़कियों को घर से बाहर भेजने से डरते हैं। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर कहते हैं कि इन मुश्किल हालात में वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हैं। सईद नदीम उर्दू के टीचर हैं।
इतने खराब हालातों में किसी को अगर कुछ दिया जाए तो इंसान के दिल को सुकून ही मिलता है। तो बहरहाल मैं इतना कहूँगा कि मैं अपनी जगह बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ पढ़ाने में, इससे इंसान को एक सेटिस्फिकेशन मिलती है कि हाँ मैं कुछ दे रहा हूँ इस कौम को, और वो भी इस वक्त इन हालातों में, ये तो बहुत अच्छी बात है।
कश्मीर में बोर्ड के इम्तहानात का ऐलान किया जा चुका है, लेकिन ना अभी टीचर इम्तहान चाहते हैं और ना ही बच्चे।
हाँ, स्कूल तो खुलना चाहिए बट हमारा सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। फिलहाल अगर स्कूल खुलते हैं तो हमारे एग्जाम्स तो सीधे होने हैं, हमारा बहुत सफ़र हो रहा है। जब हमारा 12th class है तो हम उतना कोप अप नहीं कर सकते हैं।
मुझसे किसी ने कहा कि शायद इम्तहानों का ऐलान इस उम्मीद में किया गया है कि हड़ताल टूट जाएगी, क्योंकि कश्मीरियों के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, फसल की कटाई और बच्चों की पढ़ाई। लेकिन फिलहाल तो ये बच्चे खुद ही अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुहेल हली, BBC, श्रीनगर।
इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी स्पिंडल शेप।
श्रीनगर के कम्युनिटी स्कूलों में पढ़ाई।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड होने का दावा करने वाले BCCI की हालत आज ये है कि उससे जुड़े 7 राज्य संघ रणजी ट्रॉफी तक के मुकाबलों को कराने में हिचकिचा रहे हैं। दूसरी तरफ खुद BCCI ने कहा है कि भारत न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्तमान श्रृंखला रद्द भी की जा सकती है। क्यों खड़े हुए ये सवाल और क्या निकला हल, एक रिपोर्ट के साथ हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त।
दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जब ये कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही श्रृंखला रद्द की जा सकती है तो भारत के खेल प्रेमी हैरान रह गए। बीसीसीआई ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अपनी सिफारिशों को नहीं मानने से नाराज उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा पैनल ने उन बैंकों को निर्देश दिए जिनमें बीसीसीआई के खाते हैं कि वो 30 सितंबर को बोर्ड की विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में राज्य संघों को बड़ी राशि का भुगतान न करे। दूसरी तरफ आगामी दिनों में रणजी ट्रॉफी मुकाबले भी शुरू होने जा रहे हैं, ऐसे में 7 राज्य संघों ने इन मैचों की मेजबानी करने में आनाकानी की। बाकी को पता नहीं कि आगे क्या होगा। बीसीसीआई कह रहा है कि मैच कराना राज्य संघों की जिम्मेदारी है। ऐसी हालत को लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली कहते हैं,
दो टीमों का सफर है, इसके लिए बीसीसीआई को ही पैसा रिलीज करना पड़ता है और अलॉट किया जाता है मैच। एसोसिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छी तरह मैच किया जाए और फिर वो जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसमें से वो सब में पूरे बाकी एसोसिएशन में शेयर की जाती है। लेकिन पहला खर्चा तो स्टेट एसोसिएशन करती है टेस्ट मैच करने के लिए। उसी तरह रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी अभी 2 दिन में शुरू होने वाली है। ऐसा नहीं है, इतने बड़े पैमाने की क्रिकेट आप बगैर पैसे के कैसे करा सकते हैं,
बिना पैसे हिले कैसे। हालांकि शाम होते होते जस्टिस लोढ़ा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बीसीसीआई के खातों पर कोई रोक नहीं लगाई है। अभी तो ये मामला थोड़ा सुलझता लग रहा है तो एक और मामला अटकते अटकते बच गया। लोढ़ा पैनल ने आईपीएल से पहले और बाद में 15 दिन तक किसी और दूसरे टूर्नामेंट में नहीं खेलने का सुझाव भी दिया है। इसे लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने तो अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से हटने की ही धमकी दे दी। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई पर उठते सवालों से परेशान हैं।
सबसे शक्तिशाली बोर्ड जब आईपीएल जैसा सफल टूर्नामेंट करवाता है और दूसरी ओर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उससे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या बीसीसीआई ने इतने वर्षों में कुछ नहीं किया जो भारतीय टीम नंबर 1 बनी।
सवालों से परेशान बीसीसीआई तो चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल के बीच का रास्ता क्या हो, विजय लोकपल्ली कहते हैं,
चैंपियंस ट्रॉफी की डेट चेंज नहीं की जा सकती है, आईपीएल की भी डेट चेंज करनी मुश्किल है क्योंकि विंडो ही नहीं है। उस दौरान ही आपको ये आईपीएल करवाना है, उसके तुरंत एक हफ्ते के अंदर आपको जाना है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तो हो सकता है कि अगर कोर्ट देखे थोड़ी सी इसमें रियायत कर दे कि ठीक है इस साल आप 15 दिन का गैप मत रखिए लेकिन अगले साल से आपको गैप रखना पड़ेगा।
वैसे लोढ़ा समिति ने आज स्पष्ट किया कि उनकी सिफारिशों से भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाली 6 तारीख को जब बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी तो उस पर बीसीसीआई का भविष्य निर्भर करेगा।
लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई का विवाद बता रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक के मामले में भारतीय जवानों के साथ है लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर तुच्छ राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल एक वीडियो जारी कर सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए पीएम मोदी को सैल्यूट किया था। साथ ही केजरीवाल ने कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान इन स्ट्राइक्स को झुठलाने की कोशिश कर रहा है उस झूठ को साबित करने के लिए सबूत दिए जाने चाहिए। उत्तर पूर्वी सीरिया में एक शादी समारोह में हुए आत्मघाती बम हमले में करीब 30 लोगों की मौत हो गई है। हेस्का शहर के बाहर तल ताविल में एक हॉल में एक हमलावर ने खुद को उड़ा दिया जब दुल्हा दुल्हन के निकाह की रस्म चल रही थी। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि वाशिंगटन ने भले ही रूस के साथ सहयोग खत्म कर दिया हो लेकिन वो सीरिया में शांति बहाल करने की कोशिशों को बंद नहीं कर रहा है। पश्चिम हैती में समुद्री तूफान मैथ्यू पहुंच चुका है जिसकी वजह से वहां मूसलाधार बारिश हो रही है। समुद्र में लहरें हिलोरे मार रही हैं और हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। कई तटीय इलाके 1 मीटर तक बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेलों की मध्यस्थता अदालत ने टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर लगे डोपिंग प्रतिबंध में कटौती की है और इसे 15 महीने तक सीमित कर दिया है। रूसी टेनिस स्टार पर 2 साल तक प्रतिबंध लगा था जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की थी। इसका मतलब है कि 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन शारापोवा की अगले साल अप्रैल में होने वाली प्रतिस्पर्धा फ्रेंच ओपन तक वापसी हो जाएगी। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो के इंचार्ज थे अजीत सारथी, रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।